और 27 नवंबर 2020 का दिन आप सबके लिए मंगल में हो, कल्याणकारी हो, आप सब अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो। इन शब्दों के साथ में आपको आज 18वां अध्याय 35वां श्लोक सुनाने जा रही हूँ। आया सपनम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृते सपार्थतामसि। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, जिस धृति के द्वारा निंद्रा भय चिंता दुख चार चीजें हो गई, निंद्रा भय चिंता दुख और पांचवें घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात ध्यान किए रहते हुए धृति तामसी है। निंद्रा भय चिंता दुख घमंड आदि दोष तो रहेंगे, ये दूर हो नहीं सकते, ऐसा निश्चय करने वाला मनुष्य जो है वो तामसी है, जो दुर्मेधा है, उसकी मेधा शक्ति क्षीण हो गई है। ऐसे मनुष्यों का दोषों का छोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, सोचते मन में कोई दोष है ही नहीं, ना इनको छोड़ने की हिम्मत ही होती है, ये इनको स्वाभाविक ध्यान किए रहते हैं और सोचते हैं कि इन दोषों को छोड़ने से क्या होगा, क्योंकि समझ में कुछ आता ही नहीं तामसी मनुष्य के समझ में। श्लोक 36 सुनो, जिसमें अभ्यास से रमन होता है, जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा में परमात्म विषय को बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख संसारिक शक्ति के कारण आवाम में विष की तरह परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा जाता है। सुख के विषय में बताते हैं कि सुख भी सात्विक होता है, जो भगवान के नाम से परिणाम में सुख मिलता है वो सात्विक सुख है। ये हमें सत्संग स्वाध्याय ध्यान जब कीर्तन आदि से मिलता है और इसका संबंध भगवान से होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है सुख आराम दूसरा, जैसे राजस्व विषय और इंद्रियों से संबंध जो जुड़ता है तो राजस्व सुख होता है, और जब प्रमाद और आलस्य से जुड़ता है तो तामस सुख होता है। विवेक को महत्व न देने का सात्विक सुख आराम में विष की तरह दिखता है, राजस्व से विवेक को महत्व नहीं देते और सात्विक सुख आराम में विष की तरह दिखना राज सपना है। तात्पर्य ये है कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता, प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि में राज सपना होने से सात्विक सुख भी उसको विष की तरह दुखदायी दिखता है। उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख है, पर भीतर राजस्व सुख में राग है। श्लोक 38 विषय इंद्रिय संयोगाधक अग्रे अमितोपम परिणाम विषय तत्सुख राजसं समेतम। जो सुख इंद्रियों विषयों का संयोग से होता है आरम्भ में तो अमित की तरह जो परिणाम में विष होता है तो ये सुख राजस कहलाता है। श्लोक 39 यद गये चांद गंदे चा सुखम आत्मना निंद्राल से प्रमादोथम तत्ताम समुदाहितम। निंद्राल से प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आगम में परिणाम में भी अपने को मत करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। कई बोलते हैं सोए हुए सोने में बड़ा सुख, नहाते हैं लंबे पड़े रहते हैं, प्रमाद में पड़े रहते हैं, तो उनको क्या लगता है दोनों तरह से वो सुखी होते हैं, शुरू में भी तो परिणाम भी उनको सुखी लगता है, कहते तब अच्छा हुआ तो खूब सोए। जब तमोगुण को मार देती आती है तब सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, जिसमें जिस मनुष्य में तमोगुण आता है उसका विवेक ढक जाता है और उसमें तमोगुणी वृत्ति आ जाती है, तब वह सत्वगुण के प्रकाश को ढक देते हैं। तात्पर्य विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है, जब हम विवेक को छोड़ देते हैं कि ठीक है गलत है तभी हम प्रमादी बनते हैं, तम समुष्य में मोह रहता है, जो मनुष्य तामसी होते हैं बहुत मोह होता है, वो विवेक में बाधक होता है, इसलिए तामसी नीति विवेक जागृत नहीं होने देती। इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह राम भगवान को देखता ही नहीं सीधे छलांग लगा देता है। श्लोक 40 पृथ्वी सप्तम प्रत्ये पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके स्वयं होते हुए भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों से रही। तो कहते हैं कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें तीन गुण, तीन गुण तो सब नहीं होंगे, लेकिन ये मनुष्य अपने प्रयत्न से कोई सात्विक बनता है, कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी। श्लोक 41 ब्राह्मण क्षत्रिय ऋषां शूद्राणां च परं तप कर्माणि तद्धितानि स्वभाव गुणे। ये परं तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। कर्म योग के प्रकरण में भगवान ने नित कर्म के त्याग को अनुचित बताते हुए फल में शक्ति का त्याग करके नित कर्म को करने की बात कही है, जो हमने पीछे किया था। नियत और नियत, नियत कौन थे जो हमें ग्रंथ बताते हैं, गुरु लोग बताते हैं ये काम करना चाहिए, लेकिन नियत क्या जो हमें जिसको ड्यूटी कहते हैं, जो हमें जिम्मेवारी से सौंपे जाते हैं माँ बाप से, अध्यापकों से, या जिस डिपार्टमेंट में हम सर्विस करते हैं वहाँ पर वो नियत कर्म है। अब भगवान बताते हैं किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म है। अब नियत कर्म, नियत कर्म तो सबके लिए है, लेकिन नियत कर्म जो है भगवान ने कर्मों के अनुसार गुणों के अनुसार बताए, वर्ण के मुताबिक वर्ण होते हैं ना, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध, किस वर्ण के लिए कौन सा कर्म नियत कर्म है। तो सब के लिए मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उस कर्म का कर्म उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं, उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पूर्व के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्म तीनों गुणों की वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। तीन गुणों की वृत्ति किसी में सत्व नजरता कार्य अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध के कर्मों का विवाह किया जाता है। अगर तो सात्विक वृत्ति है तो ब्राह्मण है, राशि है तो क्षत्रिय वैश्य है, और तामसी है तो शुद्ध है। श्लोक 40 समो गमस तपा सोचम शांति आज देवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। जो दिन में ये गुण होंगे उनको ब्राह्मण मान। श्लोक 43 स्वयं तेजो द्वितीय दक्षिण युद्ध चापलायनम दानीषम भाव क्षात्र करना स्वभाव। शूरवीरता तेज धैर्य प्रलय के संचालन आदि की विशेष चतुरता और युद्ध में कभी तीक्ष्णता दिखाना, दान करना, शासन करने का भाव रखना, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। श्लोक 44 कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव परिचयात्मक कर्म शुद्ध स्वभाव खेती करना, गांव की रक्षा करना गांव की न लघुओं की, और व्यापार करना, यह सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा चारों वर्णों की सेवा करना शुद्ध का भी स्वाभाविक कर्म है। जिसकी व्याख्या है दोनों कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। भोजन बाहरी लौकिक व्यवहार में जाति की प्रधानता है, पर परमात्मा प्राप्ति में भाव और विवेक की प्रधानता है। अब तो खैर शादी में भी कोई जाति की प्रधानता नहीं है, लेकिन पहले थी। लेकिन भगवान की प्राप्ति करने तो उसमें क्या होगा, उसमें विवेक और भाव लिखा जाता है। जाति या वर्ण की नहीं, कोई भी जाति का किसी भी वर्ण का मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है और की है। कई ऐसे संतों के नाम हमारे सामने हैं, हम जानते हैं कि बहुत से संत शुद्ध जाति में हुए और उन्होंने परमात्मा के दर्शन भी किया। जैसे सब जैसे बालक माँ की गोद में जाने का समान अधिकारी है, ऐसे ही भगवान का छोड़ने से सब के सब जीव भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन सब मतलब किस जाति का मनुष्य है, सब के सब मनुष्य परमात्मा तत्व को, मुक्ति को, तत्व ज्ञान को, भगवत प्रेम को, भगवत दर्शन को प्राप्त करने में स्वतंत्र समर्थ योग्य अधिकारी है। विदुर दासी पुत्र ने शादराज कबीर रैदास सदु कसाई आदि अनेक निम्न जाति के मनुष्य भगवान की भक्ति के कारण ही श्रेष्ठ बने, जाति या वर्ण के कारण नहीं। अतः चाहे ब्राह्मण का शरीर हो चाहे शुद्ध का शरीर हो, लोग व्यवहार में तो उन्हें भेद रहेगा पर भगवत प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहेगा। कारण की भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। जिससे संबंध विच्छेद करना है वो चाहे बढ़िया हो या घटिया, उसमें क्या मतलब हमें शरीर उस वक्त जाति तो शरीर की है ना कि आत्मा की। गुणों के तारतम्य से जिस वर्णों में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार उस वर्ण के जन्म सह स्वाभाविक होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए शमदम इंद्रिय निग्रह ब्राह्मण का निग्रह, क्षत्रिय के लिए शौर्य तेज आदि, वैश्य के लिए क्षति रक्षा आदि और शुद्ध के लिए सेवा आदि, ये स्वाभाविक कर्म है चारों वर्णों के। इन कर्मों को करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, ये उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। श्लोक 45 स्वय स्वय के मन में भेदता सुसिद्धि लगते नरा सर्व कर्म नेता सिद्धि यथा विदंती तच्छिन्न। अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि अथवा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है उस प्रकार को तुम उससे सुन। अपने व्याख्या अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार किए हैं वे सब भी स्वय स्वय कर्मों के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य को मनुष्य अपने को वकील अध्यापक शिक्षक नौकर आदि मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक स्वास्थ्य लाभ से भली मानते पालन करना भी उसके लिए स्व कर्म है। ये नहीं की भाई अब हम अध्यापक बन गए, चिकित्सक बन गए, वकील बन गए, लेकिन अगर हम उन कामों को अच्छे ढंग से करते हैं तो वो भी स्वकर्म बन गए। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि पक्षपात कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है। यदि प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है। आसक्ति और अभिरति, भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है कि आसक्त हुआ तो कर्म करते हुए। मनुष्य जाति आदि को लेकर ना अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी की पूजे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे। दूसरे की निंदा तिरस्कार ना करना, तिरस्कार न करे दूसरे की निंदा तथा तिरस्कार ना करे तथा अपना अभिमान भी ना करे तब अभिरति होगी। दोनों मंत्र बता दिए ना, आसक्ति और अभिरति। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है, भाव में दैवी अथवा संपत्ति की मुख्यता है। अतः दैवी अथवा संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्येक सब में ही हो सकती है। दैवीय संपत्ति मोक्ष देने वाली और आश्रय संपत्ति बांधने वाली है। इसलिए यदि ब्राह्मण में भी अपनी जाति आने को लेकर विमान हो जाए तो वह आश्रय संपत्ति वाला हो जाएगा और उसका पतन हो जाएगा। श्लोक 44। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्व इदं ततम स्वकर्मणा तं भयच्छ सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे वह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छी बात बताई गई है गीता में। स्वकर्मणा तम भय च सिद्धिं विन्दति मानवः। मनुष्य अपने कर्मों को पूरे बना करके सिद्धि मतलब भगवान को प्राप्त कर लेता है। संसार भगवान का प्रथम अवतार है, आद्य अवतार श्रीमद् भागवत में ये कहा गया। ये संसार भगवान की ही मूर्ति है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है। तो हम ये थोड़ी सोचते हैं हम मूर्ति को लगाते हैं, उसमें हम सोचते हैं ये भगवान है, भगवान को लगाते हैं। मूर्ति की पूजा न करके हम भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमने अपनी प्रत्येक क्रिया में तथा क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुन कर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुना कर श्रोता का पूजन करे। बोलने वाला भगवान और सुनने वाला भी भगवान है। अपने अपने कर्मों द्वारा एक दूसरे का पूजन करे। दृष्टि भगवान की तरफ हो, ब्राह्मण शक्ति आदि वर्णों की तरफ नहीं। वक्ता ब्राह्मण है या ब्राह्मण शक्ति ये नहीं सोचना, वो भगवान रूप है। ऋषि मुनि भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में मुख्य भाव ये रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन और दीपक से सूर्य का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। इस प्रकार भगवान का पूजन करने से संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। हम आत्मा गुरा पेशा सर्वताशा ये स्थिता गीता तक अध्याय श्लोक में। भगवत भाव से हम किसी भी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। अभी मुझे एक प्रसंग याद आ गया, ये जो है कि भगवत भाव से भगवान के भाव से किसी भी प्राणी की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी। एक भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस के पास आए बैठे, दासी तो गई ये भी बहुत सबक बैठे, तो कहा भगवान की सेवा कैसे करूं। श्री राम कृष्ण जी ने कहा आपके घर में क्या है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, कि तुम्हारा एक भेड़ू पाला है, तो बस उसको भगवान समझ के खिलाओ पिलाओ नहलाओ तो वो भगवान की ही सेवा हो जाएगी। यही मैंने मंदिर में जाकर स्वामी जी को देखा कि उन्होंने जो छोटे छोटे पाले हुए या भेड़ू तो वो कितने प्यार से उनको खिलाते थे पिलाते थे, अपने पास रखते थे। जब भालू नाम का कुत्ता 7 दिन का लाया, उन्होंने अपनी गोद में लाया, तो उन दिनों वो कपड़े नहीं पहनते थे नंगे पांव से, तो अपने लोई में लपेट कर एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला ले आए और फिर उसको अपनी जीभ देते थे चूसने के लिए। तो मैं कहती ये भगवान है स्वामी जी क्या करे, माँ ये अपनी माँ को छोड़ के आया है, इसको कुछ चाहिए है। उतने को दूध आ जाता तो फिर कहते वालो इस दूध को, एक बार तो उबरने भी नहीं देते, डब्बा आता था तो डब्बे में उस भालू का मुंह डाल देते थे, ले पी ले जितना पीना पी ले, फिर बाकी कहते थे माँ ले जाओ ऊपर क्या के काम आएगा। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि भालू को अपनी जीव देते हैं चखने के लिए, चूसने के लिए, और साथ में दूध का डब्बा भी आगे रख देते हैं, ये क्या चीज है, ये कैसे भगवान है स्वामी जी है, बहुत आश्चर्य होता था। तो ये है वो कि हम किसी की भी सेवा करें उस वक्त ये समझें कि ये वो है, ये वो है ना, भगवान समझ के करें। अगर हम किसी भी प्राणी का अनादर या तिरस्कार करेंगे तो भगवान का ही अनादर और तिरस्कार होता है। साधक यदि जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवान रूप से देखे तो उसका पूजन करे। अगर हम क्या, अगर संसार को प्राणी के रूप में देखते हैं तो क्या बनता है, प्राणी मात्र की सेवा करना। अगर भगवान के रूप में देखे तो उसको फल फूल पत्ते चढ़ाओ, अपने लिए भी कुछ ना करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है। संसार के लिए कर्म करते तो सेवा बन जाती है, जब अपने पेट भरने के लिए करते हैं तो बंधन बन जाता है, और जब हम भगवान के लिए कुछ काम करते हैं तो वो पूजा बन जाती है। अब मैं आपको सिंधु में बिंदु नामक पुस्तक में से एक और सब्जेक्ट है हमारे पास आज, आज के विषय है वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये शब्द बहुत ही सुंदर है, हमारे शास्त्रों में आया है। तो आजकल तो भला बहुत ही वसुधैव कुटुंबकम पर चर्चा होती है, भले हम उसको हृदय से नहीं अपनाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, लेकिन चर्चा तो हम देखते हैं कि होती रहती है कि ये वसुधा जो है हमारा कुटुंब है, वो इसमें रहने वाले हम लोग जो हैं वो भाई भाई हैं। वो हमारे पिता कौन है, परम पिता परमेश्वर हमारे सबके पिता है, इसलिए भाई का भाई से कैसा बैर, कैसी जलन, कुछ नहीं। हम सब एक हैं, हमें एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। इस भाव से ये शब्द वसुधैव कुटुंबकम है, इसकी सत्ता है। परम पिता परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना अपनी सनातन शक्ति द्वारा की है, परमेश्वर ने नहीं। ब्रह्म की सनातन शक्ति मूल प्रकृति के नाम से जानी जाती है। ये भी एक गहन विषय है, फिलोसफिकल है, दर्शन है ये। ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति का साक्षात करने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है। ब्रह्म विद्या का निरूपण वेदों उपनिषदों श्री रामचरितमानस महाभारत व श्रीमद् भागवत पुराण में भी बड़े सुंदर ढंग से हुआ है। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक मानव जाति को संदेश देकर जीवन जीने की युक्ति बताता है। श्लोक है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगताम जगत तेन तत्तेन भुंजीथा मांगिता कस्य सिद्धनम भुंजीथा, ये भुंजीथा अर्थात इस जगत में जो कुछ जीवन है ये सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है, इसलिए तो उनके नाम से त्याग करके यथा प्राप्त भोगता जा, जो कुछ मिलता है उसी से गुजारा करो, किसी के धन के प्रति वासना ना रखो। ब्रह्म ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि इस जगत की रचना करने वाले ईश्वर है और हम सब उसकी संतान हैं। हमें आपस में भाईचारे की भावना से मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है, इस श्लोक को जवानी याद कर लो। जो कुछ है ईश्वर ये जगत, ब्रह्मांड में नवग्रह सूर्य चंद्र बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु व केतु का अपना अपना लोक है, इन्हीं लोकों के साथ ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक भी है। ब्रह्मांड में पृथ्वी को तीर्थ माना गया है, समस्त पृथ्वी में भारत भूमि को तीर्थ माना जाता है। भारत भूमि में इसमें परम अवतारों तथा महापुरुषों का जन्म हुआ है, इन्होंने अपने जीवन काल में ही जीवन जीकर वसुधैव कुटुम्बकम की भावना की शिक्षा दी है। वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ है हमारा अपना घर तथा इसमें रहने वाले लोग हमारे भाई बंधु हैं, कोई पराया नहीं है, सब अपने ही हैं। इस भावना से युक्त होकर मानव जीव मात्र की सेवा के लिए आगे बढ़ता है। किसी के दुख को देखकर मन में दुख हो, तत्पश्चात उसके दुख को दूर करने के लिए हमारे पग आगे बढ़े, हमारे हाथ श्रम करें, तो कुटुंब की भावना का सृजन होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। मानव शरीर में पांच कोश है, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। इसी शरीर में पांच कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ, वाणी। इस शरीर में पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा और जीवा। इन पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय हैं, रूप, शब्द, रस, स्पर्श, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, की अंतःकरण, चतुष्टय। मिलकर कुल 24 तत्व के पुतले में ईश्वर ने अपनी चेतना, अपना अंश युक्त किया है। इसी जड़ और चेतन के मिलन से जगत गतिमान होता है। प्रकृति के पौधों, वृक्षों, फूलों, पत्तियों सब में चेतन का अंश विराजमान है। ऐसा भान होता है मानो भगवान अनेकों रूप धारण करके प्रकृति में विचरण करता है। साधना द्वारा प्रकृति के कण कण में प्रत्येक जीव दीन दुखियों में, बाल वृद्ध में, स्त्री पुरुष में, राजा रंक में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ब्रह्म साधना के तीन मार्ग है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म योग। ये तीनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान और भक्ति के साथ सेवा अनिवार्य है। केवल किसी को मौखिक ज्ञान देना तथा केवल ईश्वर की पूजा करना तब तक अधूरे हैं जब तक इनके साथ सेवा भाव नहीं जुड़ता है। कर्म सेवा तब बनता है जब किए हुए कर्म के बदले में हम कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे मन में केवल एक ही भावना हो कि दुखी मनुष्य या जीव मेरा ही तो स्वरूप है, दुख उसका नहीं, मेरा अपना ही है। ऐसे कर्म बिना बोले, बिना बताए होते हैं। इन्हीं कर्मों के पुष्पों से ईश्वर की सच्ची पूजा होती है। आज इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल पुनः हूँ अगला इसी प्रसंग को, इसी विषय के प्रसंग को लेकर आगे चलेंगे। जय माता दी। गीता में